मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, नमस्कार।
किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, मैं सिविल सर्विस के पढ़ने की बात कर रहा हूं, उसका बेसिक क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आपको ध्यान केवल इस बात का रखना है कि उसकी इमेज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों कहते हैं लोग कि सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए? या मैंने आपसे क्यों कहा कि मैं दिल्ली में इतने कड़कड़ाते ठंड में भी सुबह 3 बजे उठता था और 2.5 घंटे लिखता था? क्यों कहता था?
अर्ली मॉर्निंग वॉट जो होता है मिनिमम लेवल पे होता है,
उसका जो मेन कारण है वो ये है कि उस समय आपकी इमेजेस को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट मिनिमम लेवल पर होते हैं। 5 बज गए, बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चे उठ गए, चाय चू शुरू हो गई। अब आपकी इमेज में वो चाय चू आ रही है, सड़क में बाइक चलने शुरू हो गए, भड़बड़ भड़बड़ की आवाज आ रही है। आप ठीक अपना काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि आपके इस इमेज पर हस्तक्षेप होना शुरू हो गया है। अब ये उतने ब्राइट इमेज नहीं बनेंगे। आपका काम हो रहा है, पेज पर पेज आप पलटते चले जा रहे हैं, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि फिर तो सुबह ही पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत लोगों में ये कैपेसिटी होती है कि अपने आसपास के वातावरण से बिल्कुल निर्लिप्त होकर के भी अपनी पढ़ाई करते हैं, और यदि आप में उतनी ज्यादा मतलब पावर ऑफ कंट्रोल है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो यही किया है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था कि मैं इत्मीनान से बैठ करके पढ़ सकूं। मैं तो बाजार में अपनी दुकान, हाट बाजार में अपनी दुकान में बैठ करके कपड़ा बेच रहा होता था, और कोई ग्राहक आया तो उसको कपड़ा बेचा, और जब चला गया तो किताब निकाल खोल करके पढ़ ली। 5 मिनट के लिए कोई नहीं आया तो 5 मिनट पढ़ ली, और इसके बाद फिर से आया तो फिर से उसके साथ लग लिया। लेकिन वो एक कैपेसिटी की बात होती है जो परिस्थिति की देन थी। ये नहीं थी कि मैं यही चाहता था और मतलब मैं इसमें कोई बहुत वो था, परिस्थिति की देन है। अगर आपको बनना है तो आप परिस्थितियों को जिम्मेदार मत ठहराइए, परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालिए, दैट्स ऑल, या परिस्थिति के हिसाब से ढल जाइए। परिस्थिति के को अपने हिसाब से ढालना तो आसान नहीं है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से ढलना तो आसान है, उसमें क्या दिक्कत है? इतनी कैपेसिटी तो हम में है, क्योंकि वो मनुष्य नामक ही प्राणी है। आपके आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था ना कि अगर कोई हिमालय में यात्रा करे तो निम्न में से कौन सा वृक्ष उसको नहीं मिलेगा? इसका मतलब है कि चंदन के पेड़ हिमालय पर नहीं होते। लेकिन आदमी एक ऐसा प्राणी है जो आपको अंटार्कटिका में एस्किमो नामक जीव से लेकर के और सहारा और पता नहीं और कहां कहां के कालाहारी रेगिस्तान में फैला हुआ मिल जाएगा। वो मैदान में भी मिल जाएगा तो पता लगा कि 12,000 फीट की आसमान पहाड़ की ऊंचाई पर मिल जाएगा। आदमी एक ऐसा प्राणी है। इसका मतलब है कि आदमी में इतनी कैपेसिटी होती है कि किसी भी एनवायरमेंट के अनुकूल अपने आप को ढाल देता है। पेड़ों में नहीं होती, जानवरों में नहीं होती। पेंगुइन आपको सब जगह नहीं मिलेंगे, डॉल्फिन आपको सब जगह नहीं मिलेंगे, वो गंगा के उसमें बेसिन में मिलेंगे तो आपको नर्मदा के बेसिन में नहीं मिलेंगे। तो परिस्थितियों को ढाल लीजिए। तो मतलब ये मैं सतर्क आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग इसको फिर गांठ मत बांध लीजिएगा कि सर ने तो यार सुबह की बात कही है तो अब सुबह ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि न 9 मन तेल होता है और न, ये बड़ी मुसीबत हो जाती है। मैं तो केवल आपको बेसिक्स बता रहा हूं कि जब भी आप पढ़ें तो इस पर इमेज पर ध्यान रखें। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं कभी इस बात को सजेस्ट नहीं करता कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट के कई टॉपिक पढ़ें। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने एक सब्जेक्ट उठाया है तो उसका सिर्फ एक टॉपिक चैप्टर पढ़िए, छोड़ दीजिए, उस पर सोचिए। मत फैसला कीजिए कि मुझे 2 महीने में इस सिलेबस को खत्म करना है। हाँ, 2 महीने में खत्म कर लीजिए, बशर्ते कि एक एक टॉपिक करके खत्म हो रहा हो तो कर लीजिए अगर हो जाता है। लेकिन एक दिन में 2 टॉपिक मत कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है इसके पीछे। आप आजकल तो पीवीआर का जमाना हो गया है, एक साथ कई पिक्चरें लगी रहती हैं एक ही कैंपस में। आप एक लव स्टोरी पढ़िए, लव स्टोरी की पिक्चर देखिए, दूसरी लव स्टोरी की पिक्चर देखिए, तीसरी लव स्टोरी की पिक्चर देखिए, लगातार देखिए, एक से निकले दूसरे में घुसे, दूसरे से निकले तीसरे में घुसे, और अब आकर के अपने दोस्त को बताइए किसी एक पिक्चर की कहानी, क्या होगा? मिक्स होने लगेगा। अब करके देख लीजिए, क्योंकि उसके इमेजेस काफी कुछ एक जैसे हैं। लेकिन इसी काम को कीजिए कि एक लव स्टोरी देखिए, एक थ्रिलर देखिए और एक साइंस की देखिए या क्राइम की देखिए, कुछ मतलब बिल्कुल तीनों की स्टोरी अलग अलग हो। अब आप उसमें से एक की कहानी सुनाइए या तीनों की कहानी सुनाइए, अब क्या होगा? तीनों याद रहेंगी, क्योंकि उनकी इमेजेज मिक्स परफेक्ट अलग अलग तरीके से इमेज है। नेपोलियन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि मालूम है, नेपोलियन अपने बारे में कहा करता था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में दराज बने हुए, दराज जिसको कहते हैं ना, बने हुए, और मुझे और हर दराज में अलग अलग चीजें रखी हुई हैं, और मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस चीज वाली दराज को मैं, कल्पना कर सकते हैं कि उस आदमी के पास इमेज फॉर्मेशन का कितना गजब का साइंस था। नो डिस्टर्बेंस, नो मिक्सिंग, बिल्कुल परफेक्ट। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं अब आज के अपने इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।